लेकिन मन से आप गलत काम करवाते हैं तो मन अपनी पोल पट्टी जान लेता है। मन पोल पट्टी जान लेता है तो फिर अपना कहना नहीं मानता, वो जैसा चाहता है ऐसा अपने को ना चाहता। हकीकत में तो अपन लोगों को मन अपने कहने में मन होना चाहिए, लेकिन मन से हम अनधिकार चेष्टाएं करवा करवा के मन को इतना उछलन कर दिया कि अब मन जहां ले जाए वहां जाते हैं, मन जो कराए वो करते हैं, मन जो सोचा है वो सोचते हैं, मन जो अच्छा कहे वो अच्छा, जो बुरा कहे वो बुरा। वास्तविक हम खो गए, मन ही हमारे पर राज्य कर रहा है। लेकिन फिर भी गीताकार ने कहा, अर्जुन ने पूछा कि भगवान मने वायु रि दुष्करम, वायु को वश करना आसान है लेकिन मन को वश करना दुष्कर है। दर्शन शास्त्र का एक सिद्धांत है कि शास्त्रार्थ में या प्रश्न पूछने वाले की बात को पहले स्वीकार करो। वकीलात में भी वे लोग वकील ज्यादा कुशल होते हैं कि सामने वाला असील का, जो अपने असील के अपोजिशन वाले हैं, उस असील से पहले उसकी बात में सहमत हो जाता है। अच्छा कि आपका कहना है कि अमथा भाई ने आपकी चोरी की, ठीक है अमथा भाई ने आपकी चोरी की कि हाँ की, और आपका दुकान का सारा माल सामान लेकर रुपए पैसे लेकर ये भाग गए, ये बात ठीक है? हम बोले हाँ ठीक है। तो उसकी बात स्वीकार करके फिर उसी की बात से पॉइंट लाके उसकी बात काट जाती है। वकीलों को पता है, जय राम जी की। तो ये तर्क का सिद्धांत है, मनोविज्ञान का सिद्धांत है कि पहले तो सामने वाले की बात को आप जो कहते हो आंखी की आंखी बात स्वीकार कर लो। हाँ भाई बराबर छे। एक जगह पर मुकदमा हुआ और किसी महिला ने अच्छे एक धनवान की बेइज्जती करने के लिए बदनक्षी का केस किया। केस ने मेरे से जबरन किया, दुर्व्यवहार किया। तो सेठ के वकील ने कहा कि बहन जी फलाने हमारे असील ने आपसे दुर्व्यवहार किया, ये बात सच्ची है? बोले हाँ सच्ची। आप तो उसने जबरन कमरे में पकड़ के आपसे बलात् किया, ये बात सच्ची है? बोले हाँ सच्ची। जब बलात् किया तब आप अकेली थी, आपका कोई सहायक नहीं था, ये बात सच्ची? बोले हाँ मैं अकेली थी, लाचार थी। बोले ये जबरे थे और तुम कमजोर थी, ये बात सच्ची? बोले हाँ। अच्छा तो तुम्हारे से जो दुर्व्यवहार किया उस समय दरवाजे और खिड़कियां खुली रखी थी कि बंद की थी? बोले बंद की थी। तुमने तो बंद नहीं की? बोले नहीं मैंने नहीं बंद की, इन्होंने ही बंद की। माय ऑनर, अब उन्होंने खिड़कियां बंद की, अगर ये चाहती तो भाग सकती थी, माना इसकी सहमति थी, बलात् नहीं था और मुजरिम छूट गया। जयराम जी की, दिस इज अ पॉइंट। ओके, वकील आए तो वकील का कथा चल पड़ी। आबू के वकील ने बड़े सेवा भावी, श्री राम। तो महाराज सत्संग से बड़ी युक्तियां आ जाती हैं। पहले तो मन को, भगवान अर्जुन के मन को सम्मति दे देते हैं कि अर्जुन तू कहता है कि मन दुष्कर है, बिल्कुल सच्ची बात है। लेकिन फिर अर्जुन का जो शास्त्रीय स्वभाव है ना, उसको जगाते हैं। और कभी कभी कोई काम करने के लिए अपनी छुपी हुई शक्तियां जगाने के लिए संबोधन की जरूरत पड़ती है। अगर किसी मुंजी को दान करवाना है तो उसको आप ऐसा नहीं कि मुंजी क्या लिखवाते हो, नहीं, हे परोपकार मूर्ति, हे दाता, हे दाताओं में शिरोमणि, ये स्कूल बन रही है, फलाने दाता ने तो 1101 लिखवाए, लेकिन आप तो 5000 लिखवाएंगे, वो 1100 तो जरूर लिखवा देगा। अरे मुंजी कितना लिखवा दे? बोले मारे यहां 1125 लाख पड़ा है। जैसा संबोधन करेंगे ऐसा उसका मन का हिस्सा वहां काम करता है। तो भगवान मनोवैज्ञानिकों के शिरोमणि, भगवान बोलते हैं अभ्यासेन कौन्तेय वैराग्येण गृह्यते। मन दुष्कर तो है, ये तेरी बात मैंने स्वीकार की, लेकिन अभ्यासेन तू कौन्तेय, एक कुंती के पुत्र तेरी मां देख कितनी त्यागी है। इतिहास में ये बात बड़ी मुश्किल से देखने को मिलती है कि जिसने भगवान से दुख ही मांगा हो, कठिनाइयां मांगी हो, वो कुंता ने मांगी है। जिसने तपस्या मांगी है, कठिनाई मांगी है, उसी का तो पुत्र है कौन्तेय का। कौन्तेय कहते अपनी मां के त्याग और वैराग्य की याद दिलाई। और अभ्यासेन कौन्तेय वैराग्येण गृह्यते, अभ्यास और वैराग्य से ये मन वश में होता है। जो आदमी अभ्यास नहीं करते और वैराग्य रखते हैं, उनका वैराग्य उन्माद सा हो जाता है, उनका वैराग्य उच्छलंक सा हो जाता है, उनका वैराग्य बेवकूफी का हो जाता है। पहले जीवन में अभ्यास होना चाहिए। जैसे खेती किए बिना जो फसल काटना चाहते हैं उनको आप क्या कहेंगे? ऐसे ही अभ्यास के बिना जो जीवन में वैराग्य चाहते हैं वो वैराग्य का स्वाद उन्हें नहीं आता। वैराग्य का अपना स्वाद होता है, अपना सामर्थ्य होता है, अपनी योग्यता होती है, लेकिन वो अभ्यास करने के बाद वैराग्य आता है। कई ऐसे साधु मिलेंगे महाराज, पहनने को कपड़ा नहीं, रहने को झोपड़ा नहीं, खाने के लिए कोई पदार्थ नहीं, कोपिन पीकर पहर के गंगा किनारे पड़े हैं, और पानी पीने का प्यास लगती है तो तुमड़ा भी नहीं रखते, इतना वैराग्य, हाथ से गंगा जल पी लेते, रोटी हाथ में उठा के खा लेते, लेकिन जीवन में अभ्यास नहीं है तो बेवकूफी आ गई। धनवानों को देखेंगे, पढ़े लिखे को, वकीलों को, उनको सेठों को, साहूकारों को, बोले ये संसार के कुत्ते, अपने तो कुछ नहीं रखते, अपने तो त्यागी है, ये तो सब भोगी लोग हैं। ऐसे करके वो भोगियों का चिंतन करते करते त्याग का अहम बढ़ाते बढ़ाते न इधर के रहते न उधर के रहते। क्या वैराग्य तो ठीक है, लेकिन वैराग्य भी बुद्धि पूर्वक का हो, समझ पूर्वक का वैराग्य हो, और समझ आती है सत्संग से। तो आज का श्लोक का पहला वचन सत्संगो वासना त्याग, ऐसा नहीं कहा वासना त्याग स्वात्म ज्ञान, नहीं, सत्संग से वासना त्याग। बिना सत्संग के वासना अगर त्याग करोगे तो वासना त्याग का भी अहंकार आ जाएगा। दो मित्र थे, साथ में पढ़ते थे, समय पाकर वो मित्र तो राजकुमार था, राजा बन गया, और दूसरा मित्र तो था कोई वजीर का बेटा, उसको वैराग्य हुआ और साधु बन गया। महाराज साधु बन गया तो इतना वैराग्य, अभ्यास के बिना का वैराग्य। एक बार जंगल में घूमते घामते वो मित्र गया मिलने को, देखा झोंपड़ा है और कोई साधु है, चलो दर्शन करें। दर्शन किया तो वो चेहरे से पता चला, अरे यार तू तो वही अशोक, अब अशोक नहीं हूं, अब स्वामी अद्वैतानंद हूं मैं। बोले हाँ बात तो ठीक है मित्र, माफ करना, लेकिन एक बार तो मेरे राज्य में चल, मेरा राज्य पवित्र होगा, संत के नाते ही चलो। हाँ ना करते करते रोज वो राजा आता था घूमने को और बातचीत गपशप लगाते थे। एक बार उस मित्र ने स्वीकार कर लिया, राजा ने अपना पुराना मित्र आ रहा है चलो उसका स्वागत करें, और फिर साधु है और साधु की सेवा बड़े भाग्यशाली को मिलती है ऐसा सब लोग बुद्धिमान लोग जानते हैं। चलो ये साधु तो हो गया, संत है साधु की सेवा की, और फिर वो पुराना मित्र है। राजा ने महाराज कालिंग बिछा दिया, रास्ते में फूल बरसा दिए, उसके बैठने के लिए संत उचित आसन बनाया, अपना राज्य उचित आसन बनाया, कुछ ऊंचा सुहावना आसन, और आसन के करीब जाते जाते एक फर्स्ट क्लास बखमल बिछा। लेकिन वो अख्तर खान क्या कर रहा था कि अब इसको राजा तो भोगी है, इस भोगी को सबक सिखाऊं कि त्याग ही जीवन है। दो दिन से वो सोचता रहा, और जब आमंत्रण का समय हुआ और उसको लेने को वजीर आए तो उसने महाराज क्या किया, कादों में कीचड़ में पैर लपेट के, सिर पर शरीर पर सब रगड़ा बगड़ा लगा के, बाल बाल खोल के और चल पड़ा। और उसके कालिंगर और ये फर्स्ट क्लास जो बखमल थे ये वो उन पर पैर रखते रखते गादी पे जाके बैठा, और बैठते ही कहा कि हम त्यागियों के लिए तेरा राजबाज कुछ नहीं होता है, ये हम तो ये धूल में मिलने वाले शरीर को पहले से धूल में मिटा के बैठे, हमारे लिए तेरा राजबाज क्या तू मेरे को अपना राज और वैभव दिखाने के लिए बुलाया है। ऐसा करके अकड़ खान ने अपने अकड़ से मित्र की बेइज्जती कर दी। वो राजा कहता कि महाराज आप तो मेरे पुराने मित्र थे और संत थे, इसलिए मैंने आपको आमंत्रित किया है, आप आज्ञा करते मैं ऐसा करता। बुद्धिमान लोगों ने देखा कि संत राजा है, वो संत नहीं, वो अकड़ खान है जयराम जी की। तो ना समझी से अकड़ आती है और समझदारी से विनय आता है, इसलिए तुम राज्य करो तो इनकार नहीं है, तुम जंगल में रहो तो इनकार नहीं है, तुम वकीलात करो तो इनकार नहीं है, और तुम सेठपना करो तो इनकार नहीं है, तुम क्लार्क बनो तो इनकार नहीं है, और तुम स्वामी जी बनो तो इनकार नहीं है। इनकार है केवल अभिमान छोड़ने का, अभिमान मत करो। वकील होने का भी अभिमान नहीं, साधु होने का भी अभिमान नहीं, त्यागी होने का भी अभिमान नहीं। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको देता हूँ क्या लागत है मोर। मन तेरा दिया हुआ, बुद्धि तेरी दी हुई, अकल तेरी दी हुई, और ये संसार तेरा है, उसमें मैं आज का दिन सेवा करूंगा, तू जो काम से प्रसन्न हो वही काम करवाना। ऐसी भावना से जो प्रातः काल अपना संवार लेता है उसका सारा दिन सुलझ जाता है, और जो प्रातः काल अपना उलझा देता है उसका सारा दिन उलझ जाता है। और टीपे टीपे तालाब गुजराती माँ के वच बूंद बूंद से सागर बनता है। आपने कभी दरिया को बहते थोड़े देखा है, जब बरसता है तो दरिया नहीं बरसता है, बारिश बरसती है और बूंद बूंद बरसती, और वो बूंद बूंद डैम बन जाती है, बूंद बूंद एकदम सफाया कर देती, एकत्रित होती। ऐसे जीवन में थोड़ा 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 जो गलत अभ्यास है वो हमको राक्षस स्वभाव वाला बना देता है। इसका हड़पाप, उसका हड़पाप, उसका हड़पाप, फिर जहां सबका सबक सीखने को मिले वहां भी आदमी पहुंच जाता है। श्री राम। तो ये थोड़ी थोड़ी क्रूरता आदमी को बड़ा क्रूर बना देती है, और थोड़ी 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 सज्जनता 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 आदमी को महासज्जन बना देती है, और परम सज्जन परमात्मा से मिलाने की योग्यता रखती है। लगती तो एक एक बूंद है लेकिन वो आखिर में बड़ा विराट रूप धारण कर लेती है। ऐसी थोड़ी थोड़ी गलतियां आगे चल के बड़ा रूप धारण कर लेती है, और थोड़ा थोड़ा सत्संग आगे चलकर आपको महान संतत्व के रूप में बदल देता है। इसीलिए आज के सत्संग का श्लोक का पहला वचन है सत्संगो। सत्संग से आपके अंदर असंगत्व का प्राप्ति होता है। असंगत्व क्या है कि देखती आंखें हैं लेकिन संग किया कि मैं देख रहा हूं, सुनते कान है लेकिन संग हो गया कि मैं सुनता हूं, चखती जीभ है वो संग हो गया कि मैं चखता हूं, सूंघता नाक है लेकिन मैंने सूंघा, सोचता मन है और आप कहते मैं सोच रहा हूं, निर्णय लेती बुद्धि हो कि मेरा निर्णय है। आप क्या है महाराज, आप टुकड़े टुकड़े होकर बट गए हजूर, जय हो। अब क्या होगा कि सत्संग से आपको पता चलेगा कि ये देखने वाली इंद्रियां, सुनने वाली इंद्रियां, चलने वाली इंद्रियां, सुनने वाली इंद्रियां, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ आत्मा कर्तारो अहमिति मन्येत। प्रकृति में ये गुण और कर्म सब हो रहे हैं, अहंकार से जो विमूढ होकर अपने को कर्ता मानता है उसको ही कर्मों के फल के अनुसार भवाटी में भटकना पड़ता है। लेकिन जो कर्ता परमात्मा को मानता है, अपने को केवल निमित्त होने देता है, वो कर्म करते हुए भी अलिप्त हो जाता है, कर्ता छता अकर्ता पद में उसकी विश्रांति हो जाती है। तो सत्संग से असंगत्व आता है। और वासना का त्याग, वासना भी दो प्रकार की होती है, एक मलिन वासना और दूसरी शुद्ध वासना। मलिन वासना करोड़ों जन्म के संस्कार है। आप कभी निराश नहीं होना, जय जय, आप कभी हताश नहीं होना। अपने दोष या अवगुण देकर आप कभी ऐसा नहीं गांठ बांध लेना कि अपना काम नहीं है भाई भगवान के रास्ते चलना, भाई अपना काम नहीं है ईश्वर का दर्शन करना, अपने में तो देखो लोभ है, अपने में ये है, अपने में वो है। हजूर करोड़ों जन्म के जो संस्कार हैं, करोड़ों जन्म का जो मेरी चादर है उसको धोते धोते साफ होगी, रंग लगते लगते लगेगा। लेकिन आप सोचिएगा होगा नहीं, होगा नहीं तो और आप मैली कर देंगे। करोड़ों जन्म के आप जन्म मरण की चक्रकाई में आ रहे तो करोड़ों जन्म के संस्कार हैं। बुद्धि की मंदता, विषयों में आसक्ति, दुराग्रह, अपने सिद्धांत में पकड़, ये करोड़ों जन्म का आदत है। तो अब ईश्वर के सिद्धांत में अपने सिद्धांत को मिलाने के लिए जल्दी तो मन तैयार नहीं होगा। संतों के अनुभव में अपने अनुभव को मिला देने में आदमी जल्दी तैयार नहीं होगा। फिर भी आप चिंता न करें, आप अभ्यास करते करते ऐसा दिन आ जाता है कि आपको सरल हो जाएगा। जैसे स्कूल में जाते ना, पहला पहला ए बी सी डी या क ख ग या एक दो तीन लिखना कठिन हो जाता है। अब ये कठिन है कठिन है कठिन में विनोद में कहता हूँ कि लो अमथो वागरी है, तो अमथा वागरी का लड़का पढ़ने गया, 8 साल का था। मास्टर ने कहा तू सुबह से बैठा है, एक और एक बगड़ बे ऐसा करके 10 आंकड़े तू लिख के दे, मैं अभी तेरे को छुट्टी कर दू। उसने कहा कि साहेब 10 तुम्हारी भैंस चरा दू, 10 किलो तुम्हारा अनाज पिसा दूं, वो मेरे लिए आसान है लेकिन 10 लिखना मेरे बस का नहीं। अगर वो लड़का ऐसा पक्का मान ले और मास्टर भी कह ले कि तू नहीं 10 लिख सकता है तो वो बुद्धू का बुद्धू रहेगा। लेकिन ट्राई एंड ट्राई विल बी सक्सेसफुल। अभ्यास करे तो एक का लिख दिया तो दूसरा भी लिख देगा। ऐसे करते करते आज आप करोड़ों का आंकड़ा लिखना आपके लिए आसान हो गया, और 10 भैंस चराना आप स्वीकार नहीं करेंगे। 10 भैंस चराना पसंद है कि 1 करोड़ रुपया लिखना पसंद है? आप करोड़ का आंकड़ा लिख देंगे, ये आपके लिए आसान हो गया। वही काम जो पहले कठिन लग रहा था अभ्यास के बल से आसान हो जाता है। ऐसे ही जो साक्षात्कार करना या प्रभु का दीदार करना, जन्म मरण से पार हो जाना, सदैव आनंद स्वरूप ईश्वर के साथ एकाकार हो जाना, ये अभी हम लोगों को कठिन लग रहा है। अरे वो पहलवान पाड़ी को उठाते उठाते वो पाड़ा भैंसा उठा रहा है, तो आप रोज शिवो हम करते शिव स्वरूप हो जाए तो क्या बड़ा आश्चर्य। लेकिन हमारे मन की ये दो धाराएं हैं, एक होता है अभिमान, दूसरा होता है कि नहीं। कभी कभी अभिमान न जाने कौन सी गली गुची में बैठ जाता है। अपने को कुछ मानकर कुछ वस्तुओं का अभिमान करते या अपनी बुद्धि की मंदता लेकर अपने को मंद समझने का भी अभिमान करते। मन की बेवकूफी है तो आप अपने को बेवकूफ मानते हैं, बुद्धि की बेवकूफी है तो आप अपने को बेवकूफी का भी अभिमान है, मैं बेवकूफ हूँ मेरे से नहीं होगा ये भी त्याज है, और मैं बड़ा अच्छा हूँ बड़ा ऐसा हूँ ये भी अहंकार को ले आता है। ये दोनों जिसमें स्फुरित होकर लीन हो जाते हैं और उसको जो देख रहा है उस तत्व का साक्षात्कार ये सत्संग से होता है और वासना त्याग इसमें सहयोगी होती है। तो आज का श्लोक कहता है सत्संगो वासना त्याग। एक तो सत्संग होना चाहिए जीवन में जरूरी, सत्संग का अभ्यास होना चाहिए। दूसरा मलिन वासना त्याग करने के लिए तत्पर होना चाहिए। 25 बीड़ी रोज पीते थे 24 कर दो, रोज 2 घंटे गपशप में जाते थे आज 1.5 घंटा कर दो, 1.5 का सवा हो जाएगा, सवा का 1 हो जाएगा। इस प्रकार तुच्छ वासनाएं दुष्ट वासनाएं त्यागना, इससे तुम्हारा सामर्थ्य बढ़ेगा। तीसरी बात है स्व आत्म ज्ञानम विचारणम, अपने आत्मा के ज्ञान का विचार, ये आपके अंदर की शक्तियों को विकसित कर देगा। त्याग या वैराग्य बिना विचार के नहीं टिकता है, जो जो आप विचारते जाएंगे त्यों त्यों आपको संसार की नश्वरता और परमात्मा की शाश्वतता का अनुभव होगा। अगले जन्म में आपकी पत्नी थी वो अभी नहीं, अगले जन्म के पिता माता मित्र बंधु घर मकान वैभव जो भी था वो अभी नहीं, लेकिन अगले जन्म में जो तुम्हारे साथ परमात्मा था वो अभी भी है। इस जन्म के मित्र कुटुंबी बंधु मृत्यु का झटका आते ही पराये हो जाएंगे, लेकिन वो पराया नहीं होगा। इस प्रकार जो पहले तुम्हारा था अभी तुम्हारा है, और मरने के बाद भी जो तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता उस आत्मा का ज्ञान को बढ़ाते जाओ। और संसार की तुच्छ वासनाएं, शास्त्र तो यूं कहते कि जिसको अपने शरीर की मलिनता में देह की मलिनता में वैराग्य नहीं आता उसको फिर और वैराग्य के लिए उपदेश भी क्या देना। देह को जरा क्या, नाक तो तोते की चोंच जैसा है लेकिन ऊपर करके देखिए हजू, दांत तो दाड़म की कली जैसे लेकिन सुबह देखो बदबू आ रही, बैक्टीरिया मरे हुए हैं। तो देह में इस दुखालय में अगर कोई चमक है या कोई स्वाद है या कोई रस है तो उस परमात्मा का रस है, उस परमात्मा का डिस्कनेक्ट हो जाए तो इस शरीर का कोई कीमत नहीं है, इसको उठाने के लिए लोग चाहिए और इसको जलाने के लिए रुपए चाहिए। लेकिन जब तक उस चैतन्य का संबंध जोड़ने की इस शरीर में क्षमता है तब तक ये शरीर चाहे किसी का भी हो लेकिन अपनी अपनी जगह पर ठीक है। वो संबंध कट हो गया तो इसकी कोई वैल्यू नहीं, चाहे कितना बड़ा सुखी धनी के घर पला हो चाहे गरीब के घर पला हो, लेकिन इसका मूल्य तो तब है जब वो परमात्मा का सानिध्य ले सकता है, परमात्मा की सत्ता परमात्मा की स्फूर्ति जिस जब तक लेता है तब तक इसकी कीमत है। परमात्मा की सत्ता स्फूर्ति लेने की योग्यता नाश होते ही इसको उठाने के लिए दूसरे लोगों की जरूरत पड़ती है। तो शरीर की नश्वरता को बार बार विचार करें और आत्मा की शाश्वतता का बार बार ख्याल करें। फिर आता है कि प्राण स्पंदन निरोधश्च, सत्संग एक उपाय, पहला उपाय बढ़िया उपाय सत्संग, दूसरा उपाय है वासना का त्याग, तीसरा उपाय है आत्मज्ञान का विचार करना, चौथा उपाय है प्राणों के स्पंदन को निरोध करना। हमारी 10 इंद्रियां हैं, उसका स्वामी मन है और मन का स्वामी प्राण है। प्राणायाम में बड़ी शक्ति है, प्रतिदिन अगर नियमित थोड़े प्राणायाम किए जाएं तो जल्दी से आदमी को रोग नहीं होगा। किसी संत के प्रवचन में गए थे, उस संत ने 2 बार चैतन्य महाप्रभु को संदेशा भेजा था कि आप पधारो और हमें शंका है उसका समाधान करो। गौरांग आए तो सही लेकिन सत्संग चल रहा था, चैतन्य महाप्रभु नुमाई पंडित थे, शास्त्रार्थ में काशी के तमाम विद्वानों को परास्त कर चुके थे, ऐसे तेजस्वी रूपवान थे बुद्धिमान थे। वो सत्संग में आए और सभा में पीछे जुतियां जो पड़ी थी ना उसमें बैठ गए। कथा करने वाले संत की नजर पड़ी कि ओहो ये तो नुमाई पंडित गौरांग चैतन्य महाप्रभु है, आदमी को भेजा कि वो स्वामी जी को ले आओ आदर से यहां बैठाए। चैतन्य महाप्रभु ने क्या करा कि जो आदमी बुलाने को गया ना उसका हाथ पकड़ के विनंती करके उसको बिठा दिया कि अभी सत्संग चल रहा है ना, अभी जो लिंक चल रही ना उसमें डिस्टर्ब हो, बैठ जा तू, बैठ जा अपन फिर चलते, तू बैठ जा। सत्संग जब पूरा हुआ वो गौरांग आए और संत मिलन हुआ। मैंने अर्ज किया था कि अभिमान ना समझी से आता है और विनय समझदारी से आता है। गौरांग समझदार थे महाराज, पहला प्रणाम कर। आप किसी को न मे उससे वो बड़ा हुआ चाहे न हुआ वो ही जाने, लेकिन आप में विनय का गुण आ गया जयराम जी की। वो अगर बुद्धिमान है तो वो परमात्मा आपका प्रणाम परमात्मा को पहुंचा दे, और मूर्ख है तो अपने को अकड़ू खान बना ले उसकी मर्जी। प्रणाम लेने वाले को तो खतरा हो सकता है, लेकिन प्रणाम करने वाले के बाप का जाता क्या है। श्री राम। प्रणाम लेने वाला अगर सावधान न रहे, और मैं कितना बड़ा हूँ, मैं उस फकीर की भी कहानी सुना देता हूँ जो रथ यात्रा का मेला देख रहे थे अहमदाबाद में जगन्नाथपुरी में। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकल रही और रथ यात्रा निकल रही थी और भीड़ हो रही थी। रथ को हुआ कि मैं कितना बड़ा आदमी हूँ, देखो मेरे को सब लोग प्रणाम कर रहे हैं। पथ को हुआ चल रहे बेवकूफ कहीं का, तू मेरे आधार पर तो चल रहा है। पथ कहता है मैं बड़ा, रथ कहता है मैं बड़ा, मूर्ति मुस्कुरा रही कि दोनों बेवकूफ हो, न रथ बड़ा है न पथ बड़ा है, न रथ को प्रणाम किए जा रहे हैं न पथ को किए जा रहे, बड़ी तो मैं हूँ मूर्ति मुझे प्रणाम किए जा रहे। तब फकीर के दिल में वो परमात्मा हंसा के तीनों बेवकूफ है, न रथ बड़ा न पथ बड़ा न बैठने वाली मूर्ति बड़ी, मूर्ति तुझे पता होगा कि अभी पुजारी ने उठाकर रथ में रख दिया है, फिर गोदाम में धरेगा 12 महीने के बाद, फिर तू मैदान में आएगी, शिल्पी ने तुझे घड़ा था, न रथ बड़ा है न पथ बड़ा है न मूर्ति तू बड़ी है, बड़ा तो वो परमात्मा है जो हर पुतली नाच नचाता है और कभी अपना बड़ा होने का दावा तक नहीं करता है, वो परमात्मा बड़ा है। आपको पता होगा कि वसुदेव जी ने यज्ञ किया था और श्री कृष्ण ने जूठे पत्राले उठाने की सेवा उठाई थी। छोटा काम करने से आदमी छोटा नहीं होता, बड़ा काम करने से आदमी बड़ा नहीं होता, बड़ी समझ से आदमी बड़ा होता और छोटी समझ से आदमी छोटा होता है। आगंतुक साधुओं के चरण धोने का काम श्री कृष्ण ने किया, तो इससे क्या श्री कृष्ण की कीर्ति डाउन हुई या बढ़ी? बढ़ी। विनय से आदमी की यश बढ़ती। भाई अक्रू साधु तो अपने को मानते हैं कि अपने कुछ है, लेकिन कोई ज्ञानी संत था उन्होंने कहा कि कन्हैया ये सब तुम ठीक ही कर रहे हो, लेकिन हम अभी तुम्हारा पोल खोल देंगे। तुमको कोई पुण्य कमाना है, तुमको कोई यश कमाना है, तुमको क्या लेना है कि हमारे पैर धो रहे हो? तुम कौन हो हम तुम्हें जानते, ये धंधा छोड़ दो। फिर विनय मूर्ति श्री कृष्ण कहते हैं ऋषियों को कि हे भगवान, 50 वर्ष की निष्कपट भक्ति से हृदय शुद्ध तो होता है, लेकिन हृदय का अज्ञान नहीं मिटता है। 50 वर्ष की सेवा पूजा और भक्ति से हृदय का अज्ञान नहीं मिटता है, लेकिन तुम्हारे जैसे संत की एक मुहूर्त की सानिध्यता से हृदय में न जाने कितना कितना ज्ञान आ जाता है, कितना अज्ञान चला जाता है, इसलिए मुझे पैर धोने दो। ऐसा नहीं कहते हैं कि मैं नम्र हूं इसलिए मुझे पैर धोने दो, नहीं, तुम्हारे जैसे संतों के सानिध्य से ज्ञान मिलता है इसलिए हम ज्ञान की पूजा करते हैं, महाराज हमें पैर धोने दो। बगमने धोवा दियो रघुराय, प्रातः काल उठ रघुनाथा, मात पिता गुरनावई माथा। तो विनय से अहंकार विलय होता है, विनय से शत्रुता दूर होती है, विनय से अपने से जो श्रेष्ठ व्यक्ति है उनके आगे विनय करने से उनकी दुआ मिलती है, विनय से आदमी की आंतरिक योग्यता बढ़ती है और शुद्धि बढ़ती है। तो विचार से विनय पैदा होता है और बेविचार से अहंकार पैदा होता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि महाराज से सुन रहे थे सत्संग में, विघ्न न पड़े, पीछे बैठे हुए व्यक्तियों को आगे उनकी आंखों को विक्षेप करते करते आगे आए, ये उचित नहीं था महाराज, इसीलिए आपकी वाणी सुनने को इन चरणों में बैठे। तब उस पंडित संत को, जो पंडित थे बुद्धिमान थे लेकिन अंदर की विश्रांति में जरा बालक थे, उन्होंने कहा कि मुझे ये शंका होती है कि जो घास फूस खाते हैं उन ऋषियों को काम सताता है, और तुम ठाकुर जी के आगे बाल भोग लगाते हो, खीर लगाते हो और खाते हो, और फिर तुम निष्कामी कैसे होते? गौरांग कहते हैं कि देखो महाराज, बकरा जो है ना तो घास फूस खाता है और बड़ा सेक्सी होता है, कबूतर जो है सूखा सूखे मत खाते हैं, मूंग खाते हैं, सूखा अन्न खाते हैं, सूखा कठोर खाते हैं, बड़े कामी होते हैं, और सिंह मांस खाता है, जीवन में एक बार ही संसार भोगता है, क्योंकि सिंह को पता है कि मैं सिंह हूं। ऐसे ही आपको पता चल जाए कि मैं परमात्मा का हूँ और परमात्मा मेरे हैं, तो आपके जीवन में से दोष कम होने लगेंगे और आपको लगेगा मैं ये नहीं खाता और मैं वो नहीं खाता और मैं वो नहीं खाता, तो महाराज दोष निकालने के बजाय और दोष आ जाएगा। एक सेठ से जुतियों में बैठते थे, पूछा क्यों जुतियों में बैठते, बोले महाराज अपने तो निराभिमानी होना है, जो अभिमानी अभिमानी है वो लोग सब मूर्ख आगे बैठते हैं, अपने तो निराभिमानी होकर जूतों में बैठते। अरे इससे तो तू आगे बैठ जा। श्री राम, निराभिमानी का भी अभिमान न घुस जाए इसको भी सत्संग के द्वारा समझ लेना चाहिए। तो यहाँ प्राण स्पंदन निरोध, प्राणों का निरोध करने से मनोजय होता है, चित्त के प्रसाद की प्राप्ति होती है। इंद्रियों का स्वामी मन है और मन का स्वामी प्राण है, और जितना जिसका प्राण निरुद्ध है, जितना उसने प्राण को रोका है या प्राण की विधि को जानता है, उतना वो समय के अनुसार वक्त के अनुसार बाजी मार लेगा। अरब का सम्राट अपनी न्यायकारिता में न्यायप्रियता में प्रसिद्ध था, रसन ऐसा कुछ नाम था उसका। एक बार भोजन को न्याय देना था, जय जय कौन सी वानगी ज्यादा बढ़िया है उसकी जजमेंट देना था, अपने शाही महल में मित्रों के बीच बैठा था, और शाही महल का चतुर रसोईया ने अलग अलग आइटम बनाए, कौन से रसोई की कौन सी आइटम बढ़िया है वो निर्णय करना था। महाराज वो चतुराई से पिरसते पिरसते पूरी पिरसे, खीर पिरसा, कचुम्बर पिरसा और मालमली दे पिरसे, खुदा खैर करे बंदा लहर करे न जाने क्या क्या पिरसा, पिरोसते पिरोसते कटोरी में जब दाल डालते थे तो दाल का थोड़ा सा छीटा श्वेत बगला छाप वस्त्रों को, सम्राट के वस्त्रों को जाकर लगा। ओ गुस्से, वो जमाना था कि सम्राट को जरा सा नाराज करना माना प्राण दंड सिर मोल लेना। रसोईया समझ गया, लेकिन वो प्राणायाम करता था जयराम जी की, थोड़ा बहुत ध्यान करता था। रसोई के बेचारे के हाथ पैर कांपने लगे कि अब आंखें तो बरसा रही है अब क्या करूं, लेकिन समय सूचकता उसकी बुद्धिमता, प्राण रोके हुए ध्यान क्या हुआ था तो क्षण भर के लिए अब क्या करूं अब क्या करूं, जिसका प्राण शुद्ध है उसका मन भी थोड़ा शुद्ध होता है, मन शुद्ध होता है नहीं तो किस समय क्या करना उसको युक्ति भी आती। उस रसोई ने उस भय को भगा दिया, कंपन को भगा दिया, और मरता क्या न करता, जब बदबू तो मारेंगे प्राण दंड देंगे, प्राण मर ही जाना है तो कुछ युक्ति तो लड़ाओ आखिरी। उसने दाल का वो जो होता है ना चंबू पूरा दाल पिरोसने का गोल गोल और यूं दीवा दीवा क्या बोलते दाल पिरोसने का जो बर्तन था ना, क्या करा कि वो दाल इच्छिता उड़ा और उससे बदनामी तो उसको दाग लगा और गुस्से हो गया, प्राण दंड का हुक्म कर ही रहा है, तो फिर वो एक मौके का फायदा ले लिया। उसने क्या करा कि वो सम्राट पर दाल छिटकने लग गया, अब पूरा वो दाल का चंबू पर छिटक गया, तो गुस्सा और बढ़ा। फिर सोचा कि बड़ा इत्मीनान से छिटकता जा रहा है और कोई भय नहीं है, कोई ग्लानि नहीं चेहरे पर, तो आश्चर्य में उसका क्रोध बदल गया। बोला अरे ये क्या करता है, बोले अन्नदाता जहां पना आप देश परदेश में न्यायकारिता में प्रसिद्ध हैं, आप न्याय करने में न्यायकारिता में प्रसिद्ध हैं, अब दास से गलती हो गई, एक बूंद दाल आपके कपड़ों पर आ गई और आप मुझे प्राण दंड देने वाले थे, और लोग ये सुने कि एक नौकर की एक गुलाम की थोड़ी सी गलती के कारण इस न्यायप्रिय सम्राट ने अपने प्यारे रसोई को प्राण दंड दे दिया, मेरे मालिक की बेइज्जती न हो, इसलिए मैंने सोचा कि जरा ज्यादा दाल ढोल दूं ताकि प्राण दंड देने का कारण तो मेरे मालिक को मिल जाए, मेरे मालिक की इज्जत तो रह जाए, इसलिए मैंने ढोल दी दाल। राजा उसकी बुद्धि की चातुर्यता पर खुश होकर उसे गले लगा दिया, बोले प्राण दंड नहीं तू ऐसा ही किया कर तुझे माफ है। महाराज जिसने अपने प्राणों को जीत लिया वो ऐसे सम्राट के प्राणों को भी जब जैसा चाहे वैसा नचा सकता है, ये आज का श्लोक हमें कह रहा है। जय हो, जय हो।